તારીખ 25/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 738 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 141
નવમી કડીમાં બાહ્ય પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે એ કહ્યું, દસમી કડીથી સાથે ચાલ છે, બધા સાથે બોલશો. શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે કોઈ જીવો મિત્ર ભાવે વર્તતા હોય, કોઈ નિંદા કરતા હોય કે કોઈ પ્રશંસા કરતા હોય. મહારાજને એ બંને પ્રત્યે એક સરખો ભાવ રહે છે એનું નામ સમદર્શિતા છે. અભિપ્રાયથી તો ચોથા ગુણ સ્થાનમાં એ દશા ઊભી થઈ જાય છે કે આ આત્માને કોઈ શત્રુ પણ નથી અને આ આત્માનો કોઈ મિત્ર પણ નથી. શત્રુ નથી એ તો માની શકાય, પણ મિત્ર નથી એમ કેમ માનવું? કેમ કે હું એક આત્મા છું, મારો નિરપેક્ષ સ્વભાવ છે. મિત્રતાની અપેક્ષા એ પણ મારા સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ ભાવ છે. એવું સ્વરૂપના અનુભવ સહિત અભિપ્રાયની અંદર ફેરફાર થઈ ગયો છે. છતાં ચારિત્ર મોહના રાગમાં શત્રુ મિત્રતાના ભાવો પણ આવી જાય છે. જે હેય બુદ્ધિ આવે છે એના પ્રત્યે નિષેધ વર્તે છે, પણ મુનિદશામાં એ સ્થિતિ પણ નથી. મુનિદશામાં તો વિકલ્પ જ આવતો નથી. શત્રુતા રાખનાર, શત્રુપણાનો અભિપ્રાય કે પ્રવૃત્તિ કરનાર તે પણ જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, અને મિત્રપણે રહીને પ્રવૃત્તિ કરનાર કે અભિપ્રાય રાખનાર એનું જ્ઞાન થાય છે. બંનેનું, બંનેના પરિણમન અને પવિત્રમાં તફાવત છે એનું જ્ઞાન નથી થતું, એવું તો કઈ નથી. સમજણ નથી ને એમ સંભાવ્ય છે એમ નથી. તફાવતને સમજે છે, પુણ્યના ઉદયને પુણ્યનો ઉદય અને પાપના ઉદયને પાપનો ઉદય, જે તફાવત હોય છે એને સમજે છે. દુર્ગંધને દુર્ગંધ સમજે છે, સુગંધને સુગંધ પણ જાણે છે, પણ આ ઠીક છે અને આ ઠીક છે એવો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો નથી. અભિપ્રાય તો ગયો છે, વહેલો વિકલ્પ રહી ગયો હતો. અભિપ્રાય ગયો હતો, વિકલ્પ રહી ગયો હતો, હવે વિકલ્પ પણ ગયો. કેવી રીતે ગયો? કે સ્વરૂપમાં સ્થિર થયા, વિતરાગ ભાવમાં રહી ગયા, તેથી ગયો. વિતરાગ ભાવમાં રહેવાથી જે કાંઈ પદાર્થો જણાય છે તે માત્ર જ્ઞેય માત્રપણે જણાય છે, તેથી વધારે ભાવ લંબાતો નથી. અને છે પણ તે પદાર્થો માત્ર જ્ઞેય, માત્ર જ્ઞેય રૂપે જ એ પદાર્થોનું સ્વરૂપ છે, છતાં પણ માત્ર જ્ઞેય નહીં રહેતા કાંઈક આગળ ભાવ વધી જાય જીવનો. તેને વિશેષ ભાવ, વિભાવ ભાવ, વિભાવ ભાવ રૂપ વિશેષ ભાવ કહેવામાં આવે છે. એ વધારે પડતો ભાવ છે થોડો. માત્ર જ્ઞેય છે તો માત્ર જ્ઞેય પણ એ જ્ઞાનમાં રહેવો જોઈએ, એથી આગળ શા માટે કઈ ચાલવું જોઈએ. એ પ્રકારે વિતરાગ દશામાં મુનિરાજને બંને પ્રકારના, હિન્દી મેં મુનિરાજ કો દોનો પ્રકાર કે વ્યક્તિ કે પ્રતિ એક હી પ્રકાર કા ભાવ રહેતા હૈ. જ્ઞાતા ભાવ માત્ર રહેતા હૈ, ઉસકે કારણ એસા હી જ્ઞાતા સ્વરૂપ રૂપ પરિણમન, સ્વરૂપાશ્રિત પરિણમન 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 હો રહા હૈ. યહી કારણ છે ઉનકો સંભાવ એક હી ભાવ રહેતા હૈ. એ પૂરી ગાથા સંભાવ કે વિષય કી હૈ કે મુનિરાજ કો સંભાવ રહેતા હૈ તો કહાં કહાં કિસ હદ તક સંભાવ રહેતા હૈ, ઇસકા બહોત સુંદર વર્ણન ઇધર લિખા હૈ. શત્રુ મિત્ર પ્રતિ તો સંભાવ વર્તતા હી હૈ, વરના ક્યા હોતા હૈ કે જો અનુકૂળ વર્તતા હૈ ઇસકે પ્રતિ પ્રેમ આતા હૈ, પ્રીતિ હોતી હૈ, રાગ હોતા હૈ. જો પ્રતિકૂળ જાતા હૈ ઇસકે પ્રતિ અણગમા હોતા હૈ, વો દ્વેષ હૈ, ઠીક નહીં લગતા હૈ. એસા મુનિરાજ કો હોતા નહીં. માન અમાને કોઈ માન દેતા હૈ, ઇન્દ્રાદિ સ્વર્ગલોક સે આકર સ્તુતિ કરતા હૈ, માત્ર જ્ઞાન કા જ્ઞેય હૈ, ઇસસે અધિક કુછ નહીં. કિસી ને માન દિયા તો પ્રત્યક્ષ રૂપ સે આત્મા મેં તો કુછ આતા નહીં. જબ કિસી ને માન દિયા, સન્માન કિયા, ઇસ વક્ત આત્મા કો ક્યા મિલતા હૈ? આત્મા મેં કોણ સી ચીજ આતી હૈ? કુછ હોતા નહીં. ઓર કોઈ અમાન મેને અપમાન, માન નહીં વો અમાન, મેને અપમાન, માન સે વિરુદ્ધ, એસા ભી કોઈ ચેષ્ટા કરતા હૈ, પ્રવૃત્તિ કરતા હૈ. મુનિરાજ દેખતે કે ઇનકે પરિણામ ઇનમે હૈ, જો એસે કોઈ પરિણામ કરતે હૈ અપમાન કરને કા, તો ઉસકે પરિણામ તો ઉસમે હૈ. અગર અપમાન સૂચક કોઈ શબ્દ પ્રયોગ કરતા હૈ તો શબ્દ પુદ્ગલ કે પર્યાય મેં સમાપ્ત હોતા હૈ. ઇસકે પરિણામ ઓર શબ્દ એ હમારી સીમા મેં તો ઇસકા પ્રવેશ નહીં. ફિર હમ હમારી જાત કો ઇસમે ક્યો ઇન્વોલ્વ કરે, જબ હમ ભિન્ન હી રહેતે હૈ, પ્રત્યક્ષ તૌર સે ભિન્ન હૈ. માન અપમાન કી કોઈ કલ્પના માત્ર હૈ, ઓર કુછ નહીં હૈ. મેરા સન્માન ક્યા, વો ભી કલ્પના હૈ. મુજે માન મિલના ચાહીએ, વો ભી કલ્પના હૈ. મેરા અપમાન ક્યા, વો ભી કલ્પના હૈ.
क्या मुनि अवस्था में इतने विकल्प भी चलेंगे? क्या मुनि अवस्था में इतने विकल्प भी चलेंगे?
नहीं, ये तो समझाने का तरीका है, विकल्प नहीं चलता है ऐसा, अज्ञाता भाव रह जाता है। कोई मान देता है तो भी ज्ञाता भाव रह जाता है, कोई अपमान करता है तो भी ज्ञाता भाव ही रहता है, उसको संभाव कहते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में विकल्प आता है और चारित्र के मोह है उतना गमा अणगमा भी हो जाता है, जो निषेध पूर्वक होता है, जबकि मुनि दशा में एक अंश में भी नहीं होता है। फर्क क्या है? अभिप्राय में तो दोनों का अभिप्राय एक है, परिणमन में अंतर है। परिणमन में चारित्र मोह का अल्प राग द्वेष सम्यक दृष्टि को होता है, होता है माने हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी अभिप्राय विरुद्ध जिसका खेद भी आता है, और मुनि दशा में तो होता ही नहीं।
मेरा प्रश्न है कि चतुर्थ गुण स्थान में आने के बाद भी इसमें मेरे में क्या आता है, क्या जाता है, इतना विकल्प भी चलता है क्या कि वो मात्र
नहीं, लेकिन वहाँ किस प्रकार से क्या अभिप्राय था, अंदर में क्या था कि सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को संभालता था, तो ज्ञान ऐसा रहता है, विकल्प नहीं रहता है। क्या ज्ञान अवश्य रहता है, ये जरूरी नहीं कि ज्ञान हो ऐसा विकल्प हो ही। जैसे आपके पास भी सफेद व्हाइट कलर की मारुति है और बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं, एक लाइन में सब खड़ी है, आप क्या देखेंगे? नंबर प्लेट। नंबर प्लेट पढ़ते ही मेरी नहीं है या मेरी है ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, ज्ञान होता है। जो गाड़ी अपन खरीद के ले आए हैं वो मेरी है ऐसा ज्ञान होता है, विकल्प होने की जरूरत नहीं। पर जो नंबर प्लेट देखा कि अपनी नहीं है तो अपनी नहीं ऐसा विकल्प करने की जरूरत नहीं, ज्ञान में आ जाता है कि मेरी नहीं है। ऐसे दो लड़का खेलता है तो क्या विकल्प थोड़ी ना करते, ये मेरा लड़का वो मेरा नहीं, ये मेरा ये मेरा नहीं, नहीं देखते ही एक मेरा है एक मेरा नहीं ऐसा ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुत्व में भूमिका में विकल्प के साथ ज्ञान की प्रधानता में ये प्रयास चलता है। मुमुक्षु की भूमिका में प्रयास में भी दो प्रकार है, किसी को राग की विकल्प की मुख्यता में प्रयास चलता है तो किसी को ज्ञान की प्रधानता में ये प्रयास चलता है। एक यथार्थ है और एक यथार्थ नहीं है। जो विकल्प की प्रधानता में चलता है वो लगता है तो ऐसा ही है कि ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये करने लायक नहीं, ऐसा करने लायक नहीं, ऐसा विकल्प आता है। अयथार्थ है, इसका फल कहां से आएगा? अयथार्थ प्रयत्न का फल आ ही नहीं सकता, यथार्थ प्रयत्न का सही फल आएगा।
पर अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी गया तो वो दूध में उठे उफान के समान होता
तो चेंज है ही नहीं, इतना ही गिनना चाहिए कि वो चेंज चेंज नहीं है, फर्क फर्क नहीं है। क्या कि इसमें फर्क क्या हुआ? थोड़ा मंद कसाई हुआ और क्या हुआ? और तो कुछ हुआ नहीं, कसाई की मंदता थोड़ी हुई तो इसकी गिनती क्या करे, इसकी वो गिनती करने लायक चीज नहीं है। यहाँ तो मुनि दशा की बात चलती है कि ऐसा संभाव रूप जो आत्म स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा रूप जो आत्म स्वभाव है, वो तो मान और अपमान दोनों करने वालों के प्रति वैसे ही परिणाम रहते हैं, कोई विकल्प उठता नहीं है। या बुद्धिपूर्वक का मंद कषाय भी चलता नहीं है, मैं जीवित के मरने नहीं,
बीज तो यथार्थ मनुष्यता में प्रवेश से आ जाता है, इसका जो बीज है।
हाँ, विन्यास है, यथार्थ मनुष्यता में प्रवेश होने से इस संभाव का बीज वहां बोया जाता है। यथार्थ मुमुक्षुता माने मुनिपद का, सिद्ध पद का ये शिलान्यास किया है उसने, ये मंगल शिलान्यास है, मंगल प्रारंभ है कि जहां से यथार्थ मुमुक्षुता आती है। इसके बहुत बड़ी वैल्यू है, यथार्थ मुमुक्षुता की बहुत बड़ी कीमत है। अनंत काल में वो चीज आई नहीं, अगर एक दफे आ गई तो फिर ज्ञान दशा लेकर के निर्वाण पद की प्राप्ति सरलता से और सुगमता से हो जाती है। जो तैयारी करनी है वो नीम की तैयारी इधर हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, और ये बहुत बड़ी बात है, चाहने से हो जाती है, करने का निर्धार होने से इसका बल आता है, पर निर्धार नहीं होता है तो बल नहीं होता है तो गड़बड़ हो ही होती रहती है। जीवित के मरने नहीं न्यूना दीपता, आयुष चालू रहे या आयुष समाप्त हो जाए जिसको हम मृत्यु कहते हैं, आयुष चालू रहे उसको जीवन कहते हैं। वास्तव में आत्मा अनंत जीवत्व शक्ति से अनादि अनंत जीता रहता ही है, कभी मरता नहीं है। ये आयुष के प्रारंभ होने का और समाप्त होने की संज्ञा है, संज्ञा मैंने नाम कि आयुष चालू हुआ तो कह रहे कि जन्म हुआ, लौकिक में तो उतना भी नहीं है, वास्तव में तो मनुष्य को गर्भ में आने से आयु चालू होता है, हमारे यहाँ तो जन्म होने से आयु गिना जाता है कि एक साल हुआ, दो साल हुआ, 300 हुआ, 50 साल हुआ, वो तो जन्म की डेट से गिनते हैं, गर्भ की डेट से नहीं गिनते, ज्ञानी ऐसे नहीं गिनते, ज्ञानी आयु से यहाँ से गिनते हैं कि 50 साल तो जन्म से हुआ और 9 महीना और गिनो तो उतना आयु हमारा हुआ, ऐसा कहेंगे। आयु की गिनती एग्जैक्ट वैसी ही है, लेकिन वो आयु की बात है, आत्मा का जीवन वो नहीं है। आयुष है वो पुद्गल परमाणु की पर्याय है जिससे देह का संयोग वियोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं, मेरे से कोई संबंध नहीं, आया तो भी ठीक गया तो भी ठीक, इसका विकल्प ही नहीं है। जिस मृत्यु की बात करने से लोग डरते हैं, अरे सुनने से भी डरते हैं कि ऐसी बातें नहीं करो, कहते हैं कि यहां तो इसका विकल्प नहीं होता है मृत्यु को, अरे थोड़ा भी गड़बड़ होता है ना तो टेंशन में लोग आ जाते हैं, थोड़ा भी अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है ना तो टेंशन में आ जाते हैं, अरे इच्छा के अनुकूल हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं, ऐसा कोई समाचार मिल गया तो भी टेंशन हो जाता है, वास्तव में ऐसा बना ही नहीं हो, लेकिन कोई गलत समाचार मिला तो भी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन मृत्यु से तो सब घटना नीचे वाली है, सबसे बड़ी घटना है, एक्सट्रीम पॉइंट कोई घटना का होता है तो मृत्यु का होता है। तो सम्यक दृष्टि भी निर्भय होते हैं, सप्त भय रहित होते हैं, उसमें मृत्यु भय नहीं होता, ये समय सार का निर्जरा अधिकार बोलता है सप्त भय रहित। लेकिन फिर भी वहां विकल्प आता है, जिंदा रहने का, मृत्यु नहीं होने का विकल्प आ जाता है, नई बुद्धि पूर्वक आता है, कहते हैं ज्ञानी दवाई क्यों लेते हैं, विकल्प है, हे बुद्धि से है, मुनिराज तो दवाई लेंगे भी नहीं, मृत्यु के कारण जितने भी परिस्थिति देखेंगे वो अपने स्वरूप में वितराग भाव में स्थिर हो जाते हैं, वो बोला था ना विष्णु ने काटा, इधर विष्णु ने काटा और इधर स्वरूप में डूब गए। विष्णु अपनी जगह, वेदना अपनी जगह, शरीर अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह, खत्म। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता वहां अंदर में जाते, उपयोग मिट गया। वो कल पत्र आया था ना, मन ने लीजे आप दूसरे, वो उपयोग जाता है तो ये वो सब है। जब उपयोग स्वरूप में लीन हो गया तो क्या है, सारा जगत है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ा परमार्थ है इसमें लिखा था कि इसका बहुत बड़ा परमार्थ है इस वाक्य में, बहुत गंभीरता है। क्योंकि उपयोग देता है तुम तो गड़बड़ है, उपयोग नहीं जाता है स्वरूप में लीन रहता है तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये आराधना और विराधना का बहुत बड़ा पहलू, बहुत विशेष रूप से विचार करने योग्य वो बात ऐसा करके लिखा था ना मुनि दशा में, वो बात चलते विषय में उसका सोचे तो मुनि का मन जाता ही नहीं, देखने से वापिस आ जाता है, देख लेते हैं कि ये हो रहा है, ये होता है उसके प्रति वहां नहीं रहेगा, सीधा अंतर्मुख हो जाएगा, सेकंड मात्र में अंतर्मुख हो जाएगा, सेकंड से भी कम समय लगता है अंतर्मुख होने में। ये मुनि दशा है तो कुछ है ही नहीं, मन ने मन के कारण से था, उपयोग के कारण से था तो था, अब उपयोगी नहीं है तो क्या है कि कुछ है ही नहीं। वो बात समझने के लिए कितना कंडीशन रखा कि इतनी इतनी शर्त है मेरी, अगर तुमको इसका परमार्थ सुनना हो तो, वरना हमको कहने की इच्छा नहीं, ऐसा लिखा। वो बहुत लायक थे जिसको पत्र लिखा था, वो दार्शी भाई मोरवी के जस्टिस थे और बहुत कृपालु देव छोटी उम्र थे, जब से उनके परिचय में आए हुए थे और कृपालु देव के प्रति बहुत भक्ति बहुमान, बहुत अच्छा परिचय था क्योंकि छोटी उम्र से परिचय में आ गए थे। तो इस वक्त तो फिर भी ये परमार्थ की बात कहने के पीछे कितना शर्त रखा, तो मेरी इतनी शर्त है फिर मैं बात बताऊंगा, इसके भी पहले मेरे कहने की इच्छा नहीं है। इतनी योग्यता वाले को भी कितना अपने गुजराती में हम के तावे छे, हिंदी में क्या बोलते हैं तावे छे,
ठोक
बजा के, ठोक बजा के फिर कहते हैं बराबर, तो सुनने लायक तो है इनकी वर्तमान स्थिति, इस बात को सुनने लायक है कि नहीं है ऐसा पक्का करके फिर कहते हैं। ऐसी बात देवकरण जी के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ने के बारे में किया, इतनी शर्त है फिर पढ़ो वरना ये ग्रंथ तुमको पढ़ने लायक नहीं है। अपन ने विकल्प आवे हमने, चतुर्थ गुण स्थान में विकल्प आता है, थोड़ा राग द्वेष भी हो जाता है, मान दाने वाले के प्रति सद्भाव रहता है, अपमान करने वाले के प्रति थोड़ा आनगमा भी आ जाता है, दोनों बात बनती है। क्योंकि वहां चारित्र मोह का राग जीवंत है, चारित्र मोह जीवंत है तो इसके संतान जो राग द्वेष है वो भी जीवंत है, तो हो जाता है, लेकिन निषेध उसी काल में वर्तता है। हो जाता है इसलिए करने लायक है सो बात नहीं है, जबकि मुनि दशा में ये होता ही नहीं, अल्प विकल्प भी नहीं होता, क्या था दृष्टा पड़े रह जाते हैं। उसको कहते हैं कि जीवन में कोई अधिकता नहीं और मृत्यु में कोई न्यूनता नहीं। न्यूनाधिकता, न्यूनता मैंने कमी नहीं, जीव जीव जीवंत रहे तो ठीक है, अधिक बात हो गई, ऐसा करेंगे वैसा काम करेंगे ऐसा काम होगा कोई बात नहीं, पर मृत्यु आई तो कोई हमारे में कमी हो गई ऐसा कोई अनुभव आता ही नहीं है, तो वितरकता रह जाती है, संभाव रूप दशा रह जाती है। लोग में संभाव की बात दूसरी है, लोगों में तो क्या है कि कोई ऐसे भी मन कषाय होते हैं तब कुछ भी कर लो, है ना, किसी ने बोला कोई हमारा हमको एक चमाट इधर लगाया तो दूसरा इधर भी लगा दो ना, ये खाली रह गया, ऐसा भी होता है, ऐसा संभव नहीं, विकल्प ही नहीं उठे, उपयोग छूट जाए और स्वरूप में लीन हो जाए, तो ज्ञाता दृष्टा भाव है। और बहुत इससे आगे भी जो बात किया है,
स्वरूप में लीनता के आधार से विकल्प का छूट जाना ये संभव है।
हाँ, ये वितराग भाव है, स्वरूप में लीन होने से किसी भी प्रकार का भाव ही नहीं होना, उपयोग ही छूट जाता है, आत्मा संभव में रह जाता है, सम स्वभावी आत्मा है, बस उस रूप उपयोग हो गया, परिणति तो थी, छठे गुण स्थान में तो परिणति तो थी, उपयोग भी ऐसा ही हो गया, तो उसको वीतराग चारित्र कहते हैं, ऐसा संभव होने को वीतराग चारित्र कहने में आता है। ऐसे चारित्रवंत मुनिराज होते हैं, मुनि दशा चारित्र की दशा है, जबकि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की दशा है मुख्य रूप से, ये आचरण की चारित्र की दशा होती है, ये अंतर चारित्र जो आत्मा का है उसी को चारित्र कहते हैं। फिर बाहर में जो पंच महाव्रत समिति गुप्त के विकल्प है उनको ऐसा शुद्ध चारित्र के सद्भाव होने से उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। अगर ऐसा शुद्ध चारित्र संभाव रूप नहीं होता तो ऐसे विकल्प को भी चारित्र का नाम दिया जाता नहीं, व्यवहार चारित्र भी नहीं बोलते उनको, वो व्यवहाराभास है, व्यवहार चारित्र भी नहीं, ऐसी बात है। और भव मोक्षे भी शुद्ध वर्ते संभाव, जो देखो मुनिपुंसा के अवस्था, जीवन मरण तो आयु से संबंध रखता है, परंतु ये भाव है ये तो अज्ञान और मिथ्यात् स्वच्छंद और प्रतिबंध के कारण भाव भ्रमण है, और मोक्ष मोक्ष मार्ग के फल स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध दशा है आत्मा के, भाव है वो मलिन दशा है और मोक्ष है वो शुद्ध दशा है। मलिनता और शुद्धता के बीच में भी हमको भेद नहीं है, चलो अपनी दशा की मलिनता है, दूसरे की बात नहीं है वो। ये संभव किस प्रकार का कि ये बात है द्रव्य दृष्टि की, दृष्टि का विषयभूत जो शुद्ध चैतन्य सहजात्म स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, एक समय की पर्याय चाहे भव रूप हो चाहे मोक्ष रूप हो, मुझे कोई लाभ नुकसान इसमें नहीं है, ऐसी दृष्टि पर जैसा दृष्टि अनुसार ऐसा आचरण का भी परिणाम उसको यहां संभाव बोलते हैं। ऐसी दृष्टि तो चतुर्थ गुण स्थान में हो गई कि भव मोक्षेपण शुद्ध वर्ते संभाव, 165 नंबर का पत्र निकाल लिया। चौबीस साल की उम्र में लिखा गया पहला पत्र है यह, ज्ञान दशा के बाद लिखा गया पहला पत्र ही मिलता है। पहले पैराग्राफ में तीसरी पंक्ति है, मोक्ष की भी हमको कोई जरूरत नहीं। क्या लिखा है? पहले तो मुमुक्ष दशा में पूर्ण शुद्ध की लक्ष्य होता है, मोक्ष का लक्ष्य होता है। अब ज्ञान हुआ, स्वरूप दृष्टि हुई, तो गुलाट खा गए एकदम कि मोक्ष की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। वो बात कहां से आई? ज्ञान दशा होते ही वो बात कहां से आई? चतुर्थ गुण स्थान ऐसी दृष्टि हो जाती है। देखिए, लाभ नुकसान के जो गिनती है वो तो लौकिक रूप से तो पैसों में है और आबरू कीर्ति में है। एक लोभ कषाय का परिणाम है और एक मान कषाय का है। कोई मान के पीछे मरते हैं तो कोई पीछे पैसे के पीछे, और वही लाभ नुकसान की गिनती कर लेते हैं। ये बात तो रही जगतवासी जीवों की जगत में। जब धर्म के क्षेत्र में लाभ नुकसान की गिनती दूसरे ढंग से होती है कि वहां तो जितनी शांति अवस्था में हुई, शुद्धता हुई और आत्मिक सुख शांति मिला उतना लाभ, और आत्मा में जितनी आकुलता हुई, अशुद्धता हुई उतना नुकसान। इस तो इसकी मर्यादा कहां तक हुई? वर्तमान अवस्था पर्यंत हुई। संसार में, जगत में तो गिनती हुई, बाहर के संयोग में वो की सीमा में वो बात रही कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना मान मिला, कितना अपमान हुआ, तो वो संयोग की सीमा में लाभ नुकसान है। अब अलौकिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आत्मा को जितनी आत्मिक सुख शांति मिली उतना लाभ, और जितने आकुलता, अशुद्धता, मलिनता हुई उतना नुकसान। यानी स्वभाव प्रकट हुआ उतना लाभ, विभाव जितना बाकी रहा उतना नुकसान। लेकिन वो लाभ नुकसान भी पर्याय की सीमा में समाप्त तो होता है, इससे आगे उनकी कोई सीमा नहीं है। ये बात यहां चल रही है कि मेरा जो त्रिकाली स्वरूप है वो तो अनादि अनंत एक रूप त्रिकाल रहता है। चाहे अवस्था में निगोदपना हो, चाहे अवस्था में सिद्धपना हो, एक्सट्रीम पॉइंट वो है अवस्था का। जीव की अवस्था का दो अंत है, शुद्धि सिद्ध दशा, अशुद्धि में निगोद। इससे ज्यादा अशुद्धि नहीं और इससे ज्यादा शुद्धि नहीं। लेकिन वो पर्याय में सीमित होता है। जब सम्यक दर्शन होता है और दृष्टि अपने स्वरूप पर जाती है तो सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है जो स्वरूप का अनुभव जिसको बोला जाता है, कि अवस्था में सिद्धपना हो, कि अवस्था में निगोदपना हो। मेरे स्वरूप में तो कोई फर्क हुआ ही नहीं, यानी मेरे में तो कोई फर्क हुआ ही नहीं, तो इसका लाभ नुकसान मेरे में कहां आया? ब्रह्म दृष्टि प्रकाश में वो बात दो तीन दफे आती है, मुझे कोई लाभ नुकसान नहीं है। तीसरे भाग में चर्चा में विभाग में दो तीन जगह वो बात आई है, तो मुझे इससे कोई लाभ नुकसान नहीं है। स्वरूप की शांति अशांति से मुझे कोई लेना देना नहीं। पत्र में भी एक जगह है, किसी ने लिखा कि आपकी चर्चा में हम आए, आपके संग में आए, सत्संग बहुत बढ़िया हुआ था मुंबई में, मुंबई में मिले थे, तो उतना वैराग्य रहा हमको और उतना भाव हमारे अच्छे रहे कि काफी दिनों तक वो लंबाते रहे। तो बाबू क्या लिखते हैं कि मेरे स्वरूप में वो भाव आया नहीं आया इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो इससे भिन्न हूं। ऐसी दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं और ऐसा ही परिणमन को सम्यक चारित्र कहते हैं। यहां चारित्र की बात चल रही है। उन्होंने रात को कोई इसमें विकल्प न बहु का है न मोक्ष का है, कोई विकल्प नहीं है, फिर भी मोक्ष प्रति का पुरुषार्थ बहुत तेजी से चलता है। चतुर्थ स्थान में भी बोला कि मोक्ष की जरूरत नहीं, लेकिन अनन्य भावे मोक्ष में अनन्य भाव से प्रतिक्षण वो चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसी दिशा में गमन करते हैं परिणाम। लेकिन दृष्टि ऐसी होती है तो जहां तक ऐसी दृष्टि नहीं हुई पर लक्ष्य हुआ है तो भावना आएगी, परंतु इस लक्ष्य से आगे जा करके गुणा खा करके स्वरूप में आना पड़ेगा कि नहीं, ये अवस्था का विषय है। अवस्था साध्य रूप अवस्था मोक्ष होती है, मेरे में साध्य साधन दोनों अवस्था मेरे में नहीं है। जब समय दर्शन होता है ऐसे भाव और मोक्ष से भी संभाव वर्तता है, यह शुद्ध संभाव है। कैसा है ये? ये शुद्ध संभाव है। कृपालु देव ने अपूर्व अवसर की भावना में यह दृष्टि का विषय डाल दिया बीच में। भावना तो है मुनि दशा की, किसकी भावना है? दशा की भावना है कि मेरी ऐसी दशा कब होगी, पर अंदर से दृष्टि सम्यक दर्शन का दौर आता है। उस भावना के काल में भी सम्यक दर्शन के परिणमन का कितना जोर है वो यहां से निकलता है। तो बहु मोक्ष से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे में क्या फर्क पड़ता है। अरे ये बात कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, एक ओर से कहते हैं कि मेरी ऐसी दशा कब आए और ये कहते हैं कि मेरे ऐसी दशा, वैसी दशा से कोई लेना देना नहीं, दशा से ही लेना देना नहीं, ठीक आए बिना रहेगा नहीं, ये बात आए बिना रहेगी नहीं। उस तरह से ये दसवीं कड़ी का संभाव का विषय है चारों पंक्ति में। अब फिर बाहर में हमारे विचरण की अवस्था कैसे होगी, इस दशा में आएंगे तो हमारा बाहर का विचरण कैसा होगा, वो दसवीं कड़ी में कहीं ग्यारहवीं कड़ी में कहते हैं। एकाकी विचर जब मुनि दशा में आएंगे तो कभी अकेले स्मशान में ध्यान करने के लिए चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्मशान में, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसी को कहते हैं स्मशान। ध्यान करने की जगह है कोई अच्छी? हाँ, क्या पसंद भी करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? स्मशान में जाने का क्या कारण है कि रात्रि को स्मशान में कोई नहीं आता, चोर भी नहीं आता, कोई नहीं आता। क्यों? डरते हैं लोग। यहां मुर्दे को जलाया जाता है ऐसी जगह जो स्मशान, वहां जाने, रात्रि को जाने के लोग डरते हैं। भूत प्रेत की बहुत मान्यता होती है ना, जो असंतुष्ट होने से कुछ ठीक शुभ भाव लेकर मरते हैं और असंतुष्ट होते हैं वो प्रेतात्मा होते हैं। अपने जैन दर्शन में उसको व्यंतर देव कहते हैं, हल्के कोटि के देव होते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत है वो शमशान में रहते हैं, डरते हैं लोग। मुनिराज को कोई ऐसी कल्पना होती नहीं, वो तो देखते कि वो तो बहुत बढ़िया स्थान है, वहां तो कोई आएंगे ही नहीं। जहां किसी का पैर का चलने का आवाज भी नहीं आएगा कि कोई चल रहा है। गुजराती में आए के पगरव नहीं हुआ तो, और हिंदी में कहें कि वहां निरवपना होता है। क्या होता है? निरव, रव मैंने आवाज। ये शमशान भूमि ऐसी निरव होती है एकदम। मुनिराज को ये ध्यान करके अच्छा स्थान लगता है। चलो, हमारा ध्यान कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना ही यहां जमेगा। दो बात है इसमें कि एक तो भय प्रकृति खत्म हो गई, स्मशान छोड़ो ना, गांव के बाहर अमावस्या के अंधकार के रात्रि में थोड़ा एक आध किलोमीटर चल देना, कैसे परिणाम होते हैं पता लगेगा। अगर चलना नहीं हो तो गांव के बाहर कोई एकांत जगह हो, हाँ 5-15 मिनट थोड़ा चिंतन में बैठ जाना, चिंतन कैसा चलता है वो पता चलेगा। क्या क्या कल्पना होती है प्रयोग कर लेना, इसमें क्या है। फिर मुनि दशा कैसी होती है उसका अंदाजाना तो मुश्किल है, लेकिन मुनि को ऐसे ध्यान जमने के लिए न भय होता है और कोई वायु में विक्षेप नहीं हुए, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उस शमशान को भी पसंद करते हैं। तो अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि के बाद वो शमशान में भी बैठ जाते हैं, दिन में नहीं जाते। एकाकी विचर तो वही शमशान में, दिन में नहीं जाएंगे तो रात्रि में जाएंगे। दिन में तो लोग आते हैं, मुर्दा जना के कब कौन आएगा किसका पता मिलेगा, तो दिन में नहीं जाते, तो बात रात्रि की है। लेकिन काव्य में तो सीमित बात आती है। मणि पर्वत में बाघ सिंह संयोग जो, अभी पर्वतों में चले जाते जहां रास्ता नहीं हो, चट्टान ही चट्टान, कोई केड़ी नहीं, पगडंडी नहीं, रास्ता नहीं, पर्वतों में गुफाओं में जैसे सिंह घूमते हैं ऐसे ये भी मुनि शार्दुल है। शार्दुल मैंने सिंह संबोधन करते हैं आचार्य, हे मुनि शार्दुल ऐसा कहते हैं, सिंह रूप है तो देख तेरी हिम्मत देख। पर्वतों में जंगल में अकेला अकेला घूमता है, आत्मा के मस्ती में घूमते हैं। कोई वाघ मिल जाते हैं, कोई सिंह मिल जाते हैं, क्या मिला? परम मित्र नो पा जाने पाए मायूर, ये तो हमारे मित्र है, हम तो उन लोगों के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं। लोग जिसको देखते ही डरते हैं, एक बड़ा अजगर हो इतना मोटा और लंबा 25-50 फुट हो और इतना मोटा हो और कलर में इतना चटापटा हो, हाँ दूर से भी दिखे, 200-500 फीट दूर दिखेगा ना, तो यहाँ क्या होता है देख लेना। एक अजगर को 500 फीट दूर देखने वाला ऐसा विकल्प करेगा? कभी तो बहुत दूर है, यहाँ कहाँ आया है, ऐसा देखेगा क्या? हाँ, इतना दूर है तो भी भय होता है। और ये अनंत अजगरों का बाप अंदर में बैठा है, अज्ञान और मिथ्यात्व अंदर में है, दूर नहीं है, उससे डरता नहीं है। हाँ, कैसी परिस्थिति है, वो तो बड़ा अजगर है। अजगर ही कहते हैं ना हिंदी में, अजगर को अजगर ही कहते हैं। एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है, कल्पना मात्र। इसलिए कि कई लोग खेलते हैं इनके साथ, ऐसे भी लोग हैं संसार में जो सर्प के साथ खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। जिसको भय होता है उसको भय होता है, जिसको भय नहीं होता है उसको नहीं होता है। यहाँ तो किस आधार से नहीं होता है कि अपने स्वरूप के अवलंबन के कारण से नहीं होता है। हडोलासन, ध्यान में बैठते हैं, बाघ सिंह इधर उधर चक्कर लगाते हैं, ये क्या हमको देख के? तो ऐसे लोग भगते हैं, मनुष्य को भागते हुए तो देखते हैं कि हमको देखते ही भगते हैं, ये तो हिलता नहीं है, ये क्या है? उसको आश्चर्य हो जाता है, वो भी आत्मा है ना, मन वाला आत्मा है, सन्नी पंचेंद्रिय है, तो उनको आश्चर्य होता है, अरे ये क्या, लोग हमको देखने से या तो पिस्तौल उठाते हैं मारने लगते हैं या तो भागने लगते हैं। ये तो शांत 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 शांति की मूर्ति देख लो, ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं, शांत मूर्ति, उसको आश्चर्य होता है, तो वो भी समय बात कर भी बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। गौर से इनकी मुनिराज की शांति को देखेगा, उनको वो परिणाम देख के परिणाम आने लगेगा, उसको भी शांति आ जाएगी। ऐसा कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, कोई खा भी जाता है मुनि को, खा जाए तो खा जाए, लेकिन ऐसा भी होता है। कैसे क्रोधी हिंसक प्राणी मुनिराज की शांति को देखकर वो भी शांतता को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भी शांति मिलती है, तो बैठ जाते हैं समय पा करके। मुनिराज डोल आसन में रहते हैं, डोलते नहीं, आसन से भी विचलित नहीं होते, मन से तो विचलित नहीं होते आसन से भी, पर उन्होंने उपयोग का आसन तो स्वरूप में जमाया हुआ है, अंतर्बाह एक भी आसन से वो डिगते नहीं है, और मन में कोई क्षोभ नहीं होता, दोनों प्रकार लिया है, बाहर में आसन से और अंदर में उपयोग में कोई क्षोभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई मित्र अपने आता है तो क्षोभ होता है, अरे अच्छा हुआ कहां से आ गए आप, बैठते हैं उनको तो ऐसे सी भाग देख करके ऐसा लगता है उनको तो, ये तो हमारे मित्र है, रोज इनके बीच में तो रहते हैं। उनको ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है कि एक ऐसा कर देगा तो वो कर देगा तो ये हो जाएगा, तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आता है, कुछ नहीं, वो भी एक आत्माएं हैं, बेचारे अपने अपराध के कारण से उस जेल को उस जेल में पड़ा है, इसका शरीर वो इसका कैदखाना है और क्या है, कि मनुष्य शरीर भी एक कैदखाना है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, ये भी एक कैदखाना है और कोई नहीं है, इसके बंधन में रहना पड़ता है, खाना पीना ये सब बंधन है, खाना पीना सोना आराम करना ये सब बंधन है, चलना बैठना सब बंधन है, क्योंकि शरीर आकर करना पड़ता है। जब पुरुषार्थ तेज चलता है तो ध्यानस्थ अवस्था में भी हिलने की चंचलता नहीं आती। हिलने की क्या, ये जो विषोन्मेष है तिंकारा बंद हो जाता है कुछ काल के लिए, विषोन्मेष आंख का मीचना खुलना मीचना खुलना ऑटोमेटिक होता है ना, सेकंड सेकंड में कभी मिट जाती है फिर खुल जाती है फिर बंद हो जाती है। ये ध्यानस्थ अवस्था में वो भी उपयोग नहीं रहता है, वो खुलती है बंद होती है, लेकिन ऐसा अंदाज है वो टिमकारा बंद हो जाता है, चंचलता उतनी कम हो जाती है मन वचन काया के, क्यों तो स्थिर पदार्थ है, ध्रुव पदार्थ है, उस रूप परिणमन होने लगता है तो बाहर की चेष्टाएं भी ऐसी ही हो जाती है। जैसे क्रोध होता है तो ऐसी चेष्टा होती है, दुख होता है तो ऐसी चेष्टा होती है, हास्य होता है तो ऐसी चेष्टा होती है, ऐसे ध्यानस्थ अवस्था में उसी के अनुकूल शांत 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 ऐसी अंतर्वाय दशा शांति की हो जाती है। ये ग्यारहवीं कड़ी हुई, बाहर में और भी कहते हैं आगे छठे सत्रह गुणस्थान के बहुत वर्णन किया है, फिर आगे के गुणस्थान में एक एक कड़ी में पूरा कर दिया है, लेकिन जो छठे सातवें गुणस्थान में बहुत सी अंतर्वाय दशा समझने लायक जो होती है, वितराग भाव को स्वभाव को समझने लायक होती है, इसलिए उसका वर्णन ज्यादा किया है कृपा देव। गोरख पशया मन देता सरस अन्दे नहीं मन में प्रसन्न रज कर के घोर तपस्या मैंने छह मास का उपवास, छह मास तक खाना नहीं खाया हो, ऋषभदेव भगवान ने किया ही था, वर्षी तब जिसको हम कहते हैं, एक वर्ष तक खाना नहीं खाया था, छह मास तक तो आहार लेने का विकल्प ही नहीं उठाता, इतने ज्ञान ध्यान में व्यस्त थे कि छह महीने के बाद विकल्प उठा, नगर में गए लेकिन कोई जानते नहीं थे कि मुनिराज को आहार किस विधि से दिया जाए, चक्कर लगाया देखा कि यहाँ तो कोई पड़गान ही नहीं करते हैं, आमंत्रण निमंत्रण ही नहीं करते हैं, वापिस चले गए, आहार का विकल्प छूट गया, छह महीना निकल गया क्या, फिर जंगल में गए ज्ञान ध्यान में और छह महीना निकल गया, एक साल बाद फिर आहार का विकल्प उठा, इस बीच में वो श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया, पूर्वभव में ऐसे हमने आहार दान इस विधि से दिया था, तो विधि उनको मालूम हो गई और सुबह देखा तो ऋषभदेव भगवान खुद ही पधार रहे थे, खुद ही पधार रहे थे मुनि दशा में, उन्होंने आहार दान के लिए प्रगान किया निमंत्रण किया, रसोई बनाने की तैयारी नहीं किया घर में, भगवान को देखा कि चलो आहार दान देना है तो कोई तैयारियां नहीं की, जो भी है कोई घूमता था दिमाग में, ओ ये सपना आया मुनिराज ऐसे होते हैं और ऐसे उनको आहार दान दिया था हमने पूर्व भव में, पूर्व भव का कोई स्वप्न आ गया, देखा भगवान को ले आए आहार दान दिया, एक साल के बाद आहार दिया, इसलिए उसको वर्षी तप कहते हैं। ऐसे एक साल बाद भी आहार लेने वाले मुनि राज को भी मन में कोई ताप उताप नहीं होता, हमने उतना उपवास किया वो बात नहीं है, क्या हमने इतना उपवास किया वो बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो अनाहार स्वरूपी आत्मा हूं, आत्मा कहां आहार लेता है, ये आहार लेने का विकल्प ही मेरे लिए निषेध करने लायक है, चाहे एक साल बाद आए या एक दिन के बाद आए, अनाहार स्वरूपी है। आत्मा में कोई पुद्गल का आहार होता नहीं, आता नहीं, कोई एक परमाणु भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, तो थाली में से पेट में जाता है, आत्मा में कोई चीज जाती नहीं है, लेकिन जठराग्नि से वेदना होती है, उसको क्षुधा रोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्षुधा रोग कहते हैं। हमारे डॉक्टरी भाषा में तो कहेंगे कि ये तंदुरुस्ती है तो भूख लगेगी और बीमारी हो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी, लेकिन भगवान उसको क्षुधा रोग कहते हैं। तो ऐसा आहार का योग बहुत लंबे काल तक बने, उसको घोर तपश्चर्या कहते हैं, समझाने के तौर से वो तो अपने आत्मा में बहुत विशुद्ध हो जाते हैं। तप मैंने तपंती इति तपह, जो तपते हैं, जैसे सोने को तपाया जाता है, जितना तपाते उतना शुद्ध होता है, वैसे जितने स्वरूप में एकाग्रता होती है तो सोने का जैसा तेज बार आता है ऐसा आत्मा का तेज बार आता है, तो तप का एक दूसरा अर्थ होता है तेज, तप का एक शब्दार्थ होता है तेज, तो शुद्धि बढ़ जाती है अंदर में, तेज प्रकट होता है आत्मा का। और इतने उपवास के बाद, तपस्या के बाद, सरस अन्न मैंने बहुत अच्छा मिष्ठान भोजन मिले मुनिराज को, मन में तनिक भी प्रसन्नता की लकीर नहीं आएगी, ये ठीक है, इतने उपवास के बाद इतना अच्छा भोजन मिला, इतने दिन का उपवास था, शुरू में ही आमरस मिल गया, हाँ, कोई अच्छे फल का रस मिल गया, प्रसन्नता का एक सूक्ष्म विकल्प भी नहीं आएगा, ये ठीक है। अब देखिए खाना खाने को बैठते वक्त थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सब्जी ठीक है, ये दाल ठीक है, ये फलानी चीज ठीक है, ये ठीक है, ये बराबर नहीं, ये बड़ा चलता ही रहेगा। जबकि मुनिराज को तपश्चर्या के बाद, उपवास के बाद भी अच्छे से अच्छा भोजन मिले, राजा महाराजा के वहां कभी उसका आहार होता है, सेठ श्रीमंत के वहां होता है, कोई ध्यान ही नहीं उसका, प्रसन्न भाव, ये प्रसन्न भाव कब होगा कि ध्यान उपयोग जाएगा, तब मन ने लई नहीं बुझू है तो बात बात में निकाल देंगे उसका, थोड़ा और परिचय हो जाएगा इस बात का कि वो क्या कहना चाहते हैं इसमें, इसका तो उपयोग ही नहीं है, मन ही नहीं जाता, क्या खाया क्या नहीं खाया पता ही नहीं है, जैसे चिंतित अवस्था में संसारियों को बांध नहीं रहता है कि क्या खाया कि क्या नहीं खाया, ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड चालू हो और फोन आ गया कि यहां आ गए हैं और घर पे आ रहे हैं, फिर क्या खाया नहीं खाया पता नहीं चलेगा, तो चिंतित अवस्था में होता है, ये निश्चिंतित अवस्था में होता है, उतना फर्क है, स्वरूप में निश्चिंत हो गए, खाया ही नहीं खाया कोई पता ही नहीं, विकल्प आया आगे।